SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान वे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ समग्र द्विपक्षीय संबंधों, मध्य पूर्व की स्थिति सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। दोनों देश ऊर्जा, रक्षा और व्यापार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने इस दौरे के बारे में जानकारी दी।
प्राइम मिनिस्टर्स एंगेजमेंट्स विल इंक्लूड अ वन ऑन वन मीटिंग विद हिज रॉयल हाइनेस द क्राउन प्रिंस एज वेल एज फॉर्मल एंगेजमेंट्स दैट इंक्लूड अ सेरेमोनियल वेलकम एंड बायलैटरल टॉक्स। As I said, the two leaders will co-chair the second meeting of the Strategic Partnership Council. I've spoken about the two key pillars, the political and economic pillars, which are led at the ministerial level between the two sides. The visit is also likely to see the conclusion of several MOUs between the two sides.
भारत और फ्रांस 28 अप्रैल को 26 रफाल मेरीन फाइटर जेट खरीदने के करार पर हस्ताक्षर करेंगे। दोनों देशों के बीच यह अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू इसके लिए विशेष रूप से 27 अप्रैल को भारत आ रहे हैं। तकरीबन 64,000 करोड़ रुपये के इस सौदे में 22 सिंगल सीटर, 4 ट्विन सीटर जेट शामिल होंगे। ये सभी 26 लड़ाकू जेट INS विक्रांत से संचालित होंगे और मौजूदा MiG-29K बेड़े की मदद करेंगे। इस लड़ाकू जेट की कई खासियत हैं, मसलन यह विक्रांत से स्की जंप कर सकता है और बहुत कम जगह पर उतर सकता है। इसकी रफ्तार 1912 किलोमीटर प्रति घंटा और उड़ान की रेंज 3700 किलोमीटर है। यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। सौदे में बेड़े के रखरखाव, लॉजिस्टिक सपोर्ट, पर्सनल ट्रेनिंग और स्वदेशी निर्माण वाला पैकेज भी शामिल होगा। भारत ने बांग्लादेश में अज्ञात लोगों द्वारा एक बड़े हिंदू नेता भावेश चंद्र रॉय की हत्या पर अब तक की सबसे बड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले में एक बयान जारी कर कहा, यह हत्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के तहत हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का एक पैटर्न दिखाती है। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें आरोपी बिना सजा पाए आज़ादी से घूमते हैं। हम इस घटना की निंदा करते हैं और एक बार फिर अंतरिम सरकार को याद दिलाते हैं कि वह बिना कोई बहाना बनाए या भेदभाव किए हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी निभाए। बांग्लादेश की ओर से मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस के प्रेस सेक्रेटरी ने भारत के आक्षेप को निराधार बताते हुए जवाब दिया कि बांग्लादेश सरकार प्रायोजित भेदभाव नहीं करती और सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा करती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा दिए गए बयान से उपजा विवाद अभी थमा भी न था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने उच्चतम न्यायालय पर तल्ख टिप्पणी कर फिर से हंगामा खड़ा कर दिया है।
इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है, ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब ये है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो।
उनके इस बयान की हर तरफ निंदा हो रही है। विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे भाजपा का उच्चतम न्यायालय पर हमला बताया है। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के कम्युनिकेशन महासचिव जयराम रमेश ने इसे भाजपा की उच्चतम न्यायालय को कमजोर करने की एक सोची समझी साजिश बताया।
सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार है, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, सांसद भी, बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है, जब आप कानून बनाते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। अगर संविधान के खिलाफ है तो इस कानून को हम स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्री दुबे के बयान से पल्ला झाड़ते हुए सोशल मीडिया ऐप एक्स पर लिखा, भाजपा इस बयान को सिरे से खारिज करती है। पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं, संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ हैं। मैंने सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। श्री जयराम ने भाजपा पर पलटवार करते हुए शीर्ष नेतृत्व की ओर इशारा करते हुए लिखा, जब नफरत फैलाने वाले भाषण की बात आती है तो ये सांसद बार बार अपराध करते हैं और अक्सर ग्रुप ऑफ टू द्वारा समुदायों, संस्थाओं और व्यक्तियों पर हमला करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। मौजूदा भाजपा अध्यक्ष का स्पष्टीकरण कुछ और नहीं बल्कि क्षति नियंत्रण है। इस बीच वक्फ कानून में पैरवी कर रहे एक वकील ने भारत के अटॉर्नी जनरल को पत्र लिख श्री दुबे की टिप्पणियों को बेहद अपमानजनक और खतरनाक रूप से भड़काऊ बताते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही की अनुमति देने को कहा है। इस घटना के बाद श्री दुबे ने एक और ट्वीट कर भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी के ऊपर भी अपमानजनक टिप्पणी की। भाजपा सांसद ने श्री कुरैशी को एक मुस्लिम आयुक्त बताते हुए उनके कार्यकाल में झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को सबसे ज्यादा वोटर बनाने का आरोप लगाया। सभी विपक्षी दलों ने इस कथन की पुरजोर निंदा की है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भाजपा और मोदी सरकार से लोहा लेने के लिए पार्टी को जिला स्तर पर मजबूत करने का निर्णय किया है, जिसके लिए संगठन सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस 25 अप्रैल से 30 मई तक संविधान बचाओ रैली मुहिम के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के मुद्दों को घर घर ले जाएगी। इस बीच भाजपा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड केस को लेकर चौतरफा हमला बोल रही है। भाजपा प्रवक्ता प्रत्युष कांत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कथित चार्जशीट का हवाला देते हुए कांग्रेस पर तीन तरह से बेईमानी करने का आरोप लगाया।
मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को, जो लोग ये पूछ रहे हैं, घूम घूम के बोल रहे हैं कि बताइए रहा पैसा आया न गया तो क्या चोरी है, तीन तरह से चोरी हुई, तीन तरह से। पहली थी फेक रेंट एग्रीमेंट, दूसरा था एडवांस रेंट एग्रीमेंट और तीसरा था फेक, दैट इज बोगस एड्स। ये तीन तरीका उन लोगों ने अप्लाई किया पैसा कमाने के लिए। मैं इस रिपोर्ट से कोट करता हूं आप लोगों को।
कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इन आरोपों को भाजपा द्वारा झूठ और ईडी का सहारा ले कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे मूलभूत मुद्दों को दबाने की साजिश बताया है। कांग्रेस ने 21 से 24 अप्रैल के बीच पूरे भारत के 57 शहरों में प्रेस वार्ता कर जनता को इस मुद्दे पर अपना पक्ष बताने का निर्णय लिया है। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।